अलम न जअल्लहु ऐनैन, क्या हमने नहीं बनाई उसके लिए दो आंखें। अपनी अपनी आंखों को तसव्वुर में लाएं, कितनी प्यारी आंखें अल्लाह ने हमें दी, बटन के बटन चमकते हुए, पलकों की ऐसी झाड़ लगी हुई है, अंदर पानी भी है, सफेदी भी है, स्याही भी है, कहाँ तक ये आंखें देख लेती हैं। क्या तुमने कभी सोचा कि ये दो आंखें तुम्हें क्यों दी गई, क्या करने के लिए? सुरमा डालने के लिए, इसके ऊपर मस्कारा लगाने के लिए? इन आंखों को गैर महरमों के साथ मिलाओ इसलिए दी गई, इन आंखों से जिना करवाओ इसलिए, हराम चीज़ों को देखो, नंगी तस्वीरें देखो, गंदी चीज़ें देखो इसलिए कि गैर महरमों से इसको मटका मटका के अपनी शराफत और अपनी हया को पामाल कर दो? क्या तुम्हें इसलिए आंखें दी थी? वलिसान व शफतैन, और क्या तुमको एक जुबान और दो होंठ नहीं दिए? क्यों जुबान दी थी कि कैंची की तरह चले? सारा दिन चलती रहे, सारा दिन चलती रहे, सोते में भी बुड़बड़ाते ही रहो। इसलिए जुबान दी थी, चस्के के लिए दी थी, टेस्ट के लिए दी थी कि एक खाना खा लो और उसके बाद दूसरे की तैयारी शुरू कर दो। गरम खाया तो अब ठंडा, नमकीन खाया तो मीठा, मीठा ज़्यादा खा लिया तो फिर नमकीन। क्या इसलिए तुमको जुबान दी? वह शफतैन, क्या दो होंठ तुम्हें सिर्फ तुम्हें इन होंठों को सजाने और संवारने के लिए दिए? क्या इन होंठों से तुम हराम के बोसे लो इसलिए दिए? क्या इन होंठों को सिर्फ अपने चेहरे की नुमाइश के लिए कई रंगों से सजा के लोगों के सामने पेश करो? ये मकसद था इन तीन चीज़ों के देने का? देखिए, ये तीन वो अज़ाएँ के जो इंसान की ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, नेकी की तरफ ले जाएं ये तीन चीज़ें, इंशाल्लाह ताला बेहतरीन सदका जारी हैं। वो आंखें जो अल्लाह के रास्तों को देखती हैं वो मुबारक हैं, और वो जुबान जो अल्लाह के रास्ते में चलती है वो मुबारक है, और वो होंठ जिन होंठों से अल्लाह का कलाम या अल्लाह के बंदों के कोई दुख दूर किए जाते हैं, जितनी बातें की जाती हैं वो खुशकिस्मत हैं। लेकिन अगर यही आंखें किसी डेटिंग के लिए, किसी मुलाकात के लिए, किसी बॉय फ्रेंडशिप गर्ल फ्रेंडशिप के लिए रास्ते देखने वाली बन जाए, जिसकी आंखों में सपने हैं तो महबूब के हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री ने आंखों को कितना गुनाहगार कर दिया। किसके लिए आंखें लगी हुई हैं, किसके रास्ते देखने के लिए आंखें दरवाज़ों पे लगी हैं? ऐसे लगता है कि सारा हराम का इश्क माशका हमारी इंडस्ट्री में भर गया। कम ही बीवियाँ होंगी जो शोहरों के लिए कहें कि तुम्हारा रास्ता देखती हूँ। शादी हो जाए उसके बाद तो फिल्म ही ख़त्म हो जाती है, सारी फिल्म ही हराम की मोहब्बत है। आप देखिए कितना गलत इस्तेमाल है, और मैं इस बात पे ज़रा जुरत करते हुए कहूँगी कि एक दौर आज से कुछ 8-10 साल पहले का अगर ले लें, फिर भी शर्म हया थी इन चीज़ों के गलत इस्तेमाल पे। फिल्मों में कोई ऐसा गंदा सीन आता था तो लोग नज़रें झुका लेते थे, बच्चों को नहीं देखने देते थे, पहले खुद फिल्में देखते थे और कहते थे कि ये देख लिया अब इसमें ऐसा कुछ नहीं तो फिर बच्चे देखेंगे। आज तो छोटे छोटे बच्चे वो कुछ देखते और दिखाते जाते हैं कि परवाह ही नहीं। अच्छी बात नहीं है, सच्ची जो बात है, कहते हुए भी मुझे अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैंने कुछ लोगों को बच्चों के होंठों पर किस करते देखा है। इंतहाई नामुनासिब चीज़ है, जरासीम भी होते हैं इंसान के, बच्चा नाजुक होता है, झिझक भी खुलती है, बेहयाई है। जब इंसान और जानवर में फ़र्क नहीं रहता ना, तो वो सड़कों के किनारे, एयरपोर्ट्स पे, ट्रेन स्टेशन पे जो गंदी हरकत करे उसको नहीं पता चलता, लेकिन असल में ये होंठ हमारे चेहरे पे है, लेकिन ये इंसान के सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ सेक्स की ख्वाहिश भड़कती है, अगर आप साइंस की रोशनी में इसको पढ़ें तो डायरेक्ट वेंस जाती है इंसान के सेक्सुअल सिस्टम के साथ। इसलिए इन चीज़ों पर थोड़ी सी तवज्जो रखने की ज़रूरत है। हम बार दफ़ा कुछ चीज़ों को देखते देखते इतने बेहिस हो जाते हैं कि हमें फिर केयर ही नहीं होती। अल्लाह कल पूछेगा इन चीज़ों का, इस ज़ुबान से क्या कारनामे अंजाम दिए और इन आँखों से क्या किया? अल्लाह की ज़ात तुम्हें ये नेमतें दे के ऐसी छोड़ रहा है? नहीं, वहदैनाहुन्नजदैन, हमने दिखा दिए उनको दोनों नुमाया रास्ते। ये कौन से रास्ते हैं? हक और बातिल का रास्ता। पहली तफसीर सूरह दाहर में हम पढ़ चुके, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा, चाहो शुक्रगुजार बन जाओ चाहे ना शुक्रे बन जाओ। शुक्रगुजार बन के आंखें, जुबान और होंठों का तुम इस्तेमाल अच्छा कर लो, या ना शुक्रे बन के इन तीनों को गुनाहों के मोटिव बना लो। एक मानी ये है, नजदैन नजद से है, और नजद कहते हैं बुलंद सतह पर जो रास्ता हो। پیغمبروں کو بھیجا، کتابیں دی، نیکی اور بدی کے راستے بتا دیے، اختیار کی آزادی دے دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو، تمہارے لیے دو راستے ہیں، انما ھما النجدان، تمہارے لیے دو راستے ہیں، کون سا؟ نجد الخیر، ایک خیر کا راستہ ہے، بھلائی کا راستہ ہے، وہ نجد الشر، اور دوسرا برائی کا راستہ ہے۔ بس تم کیوں برائی کے راستے کو نیکی کے راستے سے زیادہ پسند کرتے ہو؟ فلیمۃ النجد الشر احب الیک من نجد الخیر، سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ دونوں ہی کام ہم کر سکتے ہیں ہر وقت، لیکن عموماً کون سے کیے جاتے ہیں؟ برے کیے جاتے ہیں، اچھے کیے جاتے ہیں؟ قرآن پاک میں دل کی بات بہت ہوئی، آنکھوں کی سماعت اور کانوں کی بات ہوئی، لیکن یہ آیت اپنی شان کی یونیک آیت ہے۔ میں نے بہت ابتدائی سفر میں جب ان آیات کو پڑھا، دل کانپ کے رہ گیا، اور میں نے ان آیات پہ اتنے درس دیے ہیں الحمدللہ۔ جہاں بھی خواتین ہیں، ان دو کے صحیح استعمال اور غلط استعمال، آنکھوں کا صحیح استعمال، آنکھوں کے غلط استعمالات میں ساری بے حیائی کرپشن کی بات آتی ہے، اور لسان کو دیکھ لے تو ساری سرخ حجرات اس میں چھپ جاتی ہے۔ جتنی اخلاقی برائیاں لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہیں، ان دو پہ بات کرنے کے لیے یہ بہترین بات ہے۔ اور ایک کلاس تھی ہماری، بہت ہی اچھی یانگ بچیوں کی کلاس تھی، میں نے ان کو جب یہ آیتیں پڑھائیں، اس وقت تو جو خوشی ہوتی ہے، لیکن میری دل کھل کے رہ گیا۔ ان میں ایک بچی بہت ہی پیاری ایکٹیویٹیز بناتی تھی، اللہ کی دی ہوئی صلاحیت بھی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ خود بھی کوشش کر کے بنا لیتے ہیں، اور کچھ ہوتی ہیں صلاحیتیں، سوچتے بھی نہیں کہ نہیں ہماری کہیں باہر نہ آ جائے کوئی ٹیلنٹ۔ وہ ایک پوری پیپر پہ بنا کے لائی، اس نے صرف اوپر یہ آیت لکھی، علم نج اللہ عینین ولسان وشفتین، یہ تینوں آیتیں لکھی، اور اس کے نیچے اس نے ایک بڑی خوبصورت سی آنکھ بنائی۔ اکثر لڑکیوں کو ویسے ہی آنکھیں بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ پھر اس نے اس آنکھ کے اوپر یوں پلکیں لگائی، پلکیں لگا کے نا، ہر پلک پہ جتنے میرے اس دن سبق میں آنکھوں کے گناہ، یا میں نے اس پہ کوئی لسٹ دی ہوگی، تو اس نے ہر پلک کے اوپر ایک ایک گناہ لکھ لیا۔ نیچے ایک اس نے زبان بنائی، اور باہر نکلتی بھی زبان تھی، اور نیچے آتی بھی وہ زبان سانپوں میں بدل جاتی ہے، اور ہر سانپ کے سرے پہ غیبت، بہتان، چگلی، ہونٹ بنائے تو اس کے گناہ لکھے۔ یعنی ایک تصویر ایک گھنٹے کے لیکچر کے برابر۔ دعا کرے اللہ دماغ کھولے ہمارے بھی، ٹیلنٹ کھولے، ارادے کرے، کوشش کریں۔ بے حس انسان کچھ نہیں ہوتے، مردہ انسان، کہہ دیا ہو گیا، نہ کہا نہیں ہوا، کہا ہی نہیں، بتایا ہی نہیں، کچھ سمجھ نہیں آتی، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کیوں نہیں آتی، دماغ سب کا ایک جتنا ہے، صرف انٹرسٹ۔ کھانا پکانا آتا، ایک چیز پکانے جاتے ہیں، دوسری ساتھ خود ہی بن جاتی ہے، ذرا اچھی تھی اس میں ذرا یہ نہ ڈال کے دیکھو، ذرا اس میں یہ ٹرائی نہ کر کے دیکھو، کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ پہلے دن جب آپ کچن میں کھڑے ہوئے تھے، اور آج اس میں کچھ فرق ہے؟ پہلے تو چھری پکڑتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، آج کیوں نہیں ڈر لگتا؟ کیونکہ آپ نے اس میں اپنا ٹیلنٹ لگایا، کھل گیا، سامنے آ گیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ سوچ لوں کہ مجھے نہیں آتا؟ یہ نہیں، صرف ذہن لگانے کی بات ہے۔ اور آپ نے اس صورت میں سے ان تین آیتوں پہ بہت غور کرنا، چند سوال لکھیں گے ہم اپنے محاسبے کی نایتوں پہ، کیا میں اپنی آنکھوں کا صحیح استعمال کرتی ہوں؟ کیا 30 بارے پڑھنے کے بعد میری آنکھیں حق اور باطل چیز کا فرق کر لیتی ہیں؟ کیا ابھی بھی میری آنکھیں گندے منظر تو نہیں دیکھتی؟ کیا ابھی بھی میں اپنی آنکھوں کے اشاروں سے دوسروں کو دکھ تو نہیں دیتی، جس کو آنکھ مارنا کہتے ہیں؟ کیا میری آنکھ مارنے کی عادت گئی کہ نہ گئی؟ کیا میں آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے کر کے دوسرے کی غیبت تو نہیں کر دیتی؟ کیا میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ہیں کہ دکھانے کے لیے ہیں؟ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ کیا قیامت کے دن میں آنکھوں کی نعمت کا حساب دے سکوں گی؟ یہی سارے سوال زبان کے ساتھ بھی لکھیں گے، اور ہونٹوں کے بھی لکھیں گے، اسی سے ریلیونٹ۔ اور آپ نے ایک چیک لسٹ بنانی ہے اپنے لیے، جس میں آپ اپنے ان تین اعضاء کو اب چیک کیا کریں گے۔ اب ساری زندگی کے لیے غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے۔ یہ صرف بولنے کے آلات نہیں ہیں، یہ انسان کی سوچ ہے، یہ باہر لگے ہوئے صرف ایک بٹن ہے۔ آپ دیکھیے کہ آپ یہ بٹن دباتے ہیں تو لائٹ جل جاتی ہے نا، بٹن بند کرتے ہیں تو لائٹ بند ہو جاتی ہے نا، لیکن کیا کوئی ایک بازار سے بٹن لا کے کسی دیوار سے لگا لے، صرف ختم، दबाए, ऊपर करे, नीचे करे, लाइट चलेगी? नहीं चलेगी ना। बटन के अंदर पूरी वायरिंग होती है। तो ये आंखें और ये तीनों चीज़ें हमारे बटन हैं जिनका पूरा सिलसिला अंदर से है। क्यों कहा यगुद्दु मिन अबसारिहिन, अपनी आंखों को झुका के रखा करो, या यगदुत न मिन अबसारिहिन्ना, ए औरतों अपनी निगाहों को गैर मर्दों से झुका के रखा करो। ज़रूरत के वक्त बात की जा सकती है लेकिन आमने सामने मत बैठो, आंखों में आंखें मत डालो, इन आंखों को सही इस्तेमाल करो। हम जब कुरान के साथ जुड़ते हैं तो अल्लाह ताला खुद हमारे लिए कितने रास्ते खोल देते हैं खुद को चेक करने के। अब ये तो थी वहदई ना हो नजैन की तफसीर जो हमें इन आयतों के साथ मिली। इसी तरह किसकी दूसरी तफसीर भी की गई कि हमने दिखा दिए इसको दो नुमाया रास्ते। मुफसरीन कहते हैं कि इससे मुराद है माँ के पिस्तान। बच्चा जब दुनिया में आता है तो उसको कोई नहीं बताता लेकिन वो माँ का सीना छूने लगता है और उससे दूध पीने लगता है। तो नजदईन, दो उभरी हुई चीज़ें, इशारा है बच्चे के दूध पीने की तरफ, ये भी मुराद है। यानी दुनिया में आके ऐसे ही नहीं छोड़ दिया बल्कि अल्लाह की ज़ात जो है वो बच्चे को दुनिया में लाते ही उसको दूध पिलाना, उसका पीना, उसका सब कुछ आसान कर देती है ताकि बच्चा किसी दूसरे से पूछे बगैर के काम कर ले। बहरहाल दोनों ही ठीक है, लेकिन अगर देखा जाए पिछली आयतों के साथ तो ये पहला मानी जो हम जिस पर डिटेल से बात कर चुके हैं वो बेहतर है। यहाँ एक छोटी सी और चीज़ भी देखिएगा कि पहले आँखों का जिक्र आया है, फिर ज़ुबान का और फिर होंठों का। ये तरतीब भी काबिले गौर है। अल्लाह ताला इसी तरह से नहीं कर देता कि जहाँ जो दिल चाहा कर दिया। बुराई का रास्ता हो या भलाई का रास्ता हो, आँखों से शुरू होता है। आंखें चेहरे की तर्जुमान होती हैं, दिल के जज्बात की अक्कासी कर देती हैं। इंसान जो सोचता है वो उसकी आंखों से दिखता है। हमारी अक्सर बीमारियों का पता ही आंखों से लगता है, आंखें पीली हो गई, आंखें लाल हो गई। तो लिहाजा इनका सही इस्तेमाल करना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद फरमाया फलक तहमल अकबा, फिर वो दाखिल ही नहीं हुआ अमले खैर की दुशवार गुजार घाटी में। वमा अदराकमल अकबा, और आप क्या समझे कि ये अकबा क्या है? फक्कु रकबा, वो गुलामी से गर्दन छुड़ाना है। और क्या है? औ इत्आमु फी यौमिन ज़ी मस्गबा, या खाना खिलाना है भूख के दिन कहत साली में। और क्या है? यतीमन ज़ा मक़रबा, यतीम को जो रिश्तेदार भी हो। औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, या खाक नशीन मिस्कीन को। ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة, फिर वो ईमान वालों से हो जो एक दूसरे को नसीहत करते हैं सब्र की और एक दूसरे को नसीहत करते हैं रहमत की। क्या मिलेगा? أولئك أصحاب الميمنة, ये लोग हैं दाएं हाथ वाले। ये थी घाटी। यहाँ लफ्ज़ आया अकबा, घाटी को कहते हैं वो रास्ता जो पहाड़ों में हो, दुश्वार गुजार होता है। यहाँ सवाल किया गया फलक तहमल अकबा, फिर नहीं दाखिल हुआ वो खैर की घाटी में। तो ये इस्तफहाम है, सवाल है, आप कह सकते हैं सवालिया अंदाज है, जिससे मुराद इनकार है कि यानी उसने ये नेकियाँ नहीं ली। यहाँ इशारा है नेकी के रास्तों में आने वाली मुश्किलात का। पीछे हम एक आयत पढ़ चुके थे, सूरह ज़ुमर में भी थी, सूरह अल-अराफ़ में भी थी, कि जिसका सीना भिज जाता है ना, दयक़ सदर, उसको नेकी करना ऐसे लगता है जैसे पहाड़ पे चढ़ना, दिल के मरीज़ का पहाड़ की तरफ चढ़ते हुए सांस फूलने लगता है ना। इसी तरह हकीकी दिल बीमार जब हो जाते हैं, शरह सदर नहीं होता, तो नेकी करना मुश्किल होता है। पैसा देते हुए जान निकल जाती है, अल्लाह के रास्ते में काम करते हुए इंसान को मुश्किल होती है। यहाँ वही बात जहन में रखेंगे तो बात समझ आएगी कि उसको ये सारे काम जिनका तस्करा आगे आ रहा है ये करने घाटी पे चढ़ने के मुतरादिफ लग रहे होते हैं। हाय बड़ा मुश्किल है, फक्कु रकबा, गुलामों को आज़ाद कराऊँ, पैसा दूँ। आप देखिए ऐसे लगता है दिल के तार पैसे के साथ बंधे हुए हैं, जहाँ पैसा लगता है एकदम होता है इतनी महंगी, इतने पैसे, ये है वो है। कहा कि जो मेहनत और मशक्क़त तुम नेकी के कामों में करोगे और नफ्स को और शैतान को और मुआशरे को पीछे डालने में जो मेहनत करोगे ये घाटी पर चढ़ने के मुतरादिफ है। ये कैसे हो सकता है कि बंदा नेकी करना सोचे और एकदम कहे हाँ कर लो, मुआशरा भी के कर लो, नफ्स भी के हाँ हाँ उठो फजर पढ़ो, और साथ ही साथ शैतान भी के उठो शाबाश बहुत अच्छे बच्चे हो जाके काम करो नेकी के। रेजिस्टेंस, इसी को जिहाद कहते हैं, जो आप अपने आप को एक चीज़ पे रखना चाहते हैं और दूसरी तरफ का तकाजा फ़र्क है, फ्रिक्शन है, हर लम्हे नेकियां करना मुश्किल हो रही हैं। और आप देखिए कि ऐसे लग रहा है कि अल्लाह की ज़ात हमें यहाँ पे ये खबर दे रहे हैं कि देखो अब तुम्हारे नेकियों के करने की स्पीड दूसरे लोगों से ज़्यादा होनी चाहिए। जिस गाड़ी के अंदर दिन रात पेट्रोल डलता है वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक रहती है, और किसी गाड़ी को आप 1 महीना छोड़ दें कहीं बंद करके आएंगे तो हो सकता है बैटरी भी काम ना करे, जंग आलूद हो चुकी होगी। जब हम कुरान के साथ जुड़ते हैं और हमारे अंदर अल्लाह का इतना नूर आने लगता है कलाम की सूरत में, तो फिर हमारी बका किस में है कि हम चलें। जैसे कहते हैं ना, चलती का नाम गाड़ी, तो अब आप अपना नाम गाड़ी की जगह लिख लें कि चलती का नाम बंदी। अल्लाह की बंदी बनना है सारी ज़िंदगी, अब मैंने अल्लाह के रास्ते में चलना है, जो मैंने अपने दिल में लिया, अपने लिए सीखा समझा, अब इसके ऊपर अमल करना है, इसी की दावत दूसरों को देनी है। यही है वो चीज़ जो इंसान को दुनिया से जाते वक्त काम आएगी और दुनिया में भी काम आती है। हम बहुत सारे सोचते हैं कि नहीं, दुनिया में तो फिर ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, नेकियां करो, कोई खुशी नहीं, कोई ख्वाहिश नहीं, चलो कोई नहीं, आखिरत बन जाएगी। नहीं, आखिरत से पहले दुनिया बनेगी। असल बात यह कि हम करने के लिए तैयार हों। नफ्स की बागें ढीली हैं, कस लीजिए, कमर कसने के दिन है अब, वला दी आती तो अभान आने वाली है। हाँपने घोड़ों की तरह अल्लाह के रास्ते में जो काम करने के लिए अपने आप को कहाँ कहाँ लेकर जाते हैं, इसीलिए अल्लाह की ज़ात अब यहाँ हमें ऐसी नेकियों की बात बता रही हैं, ख़ास तौर पे जहाँ माल की बात है। देखिए आयत नंबर 6 को अगर आप मिला लेना इन अगली सारी आयतों से तो आपको बात बिल्कुल समझ आएगी। एक दुनियादार इंसान कौन है? अहलक तो माल अल्लुबादा, उसका सारा माल जाता है अपनी नुमाइश पे, अपनी ज़ात पे, कोई उसको बुरा नहीं कह सकता उस वक़्त में, अगर वो लाखों सिर्फ एक शौक के लिए लगा दे। अब इसके बरक्स अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखो सच्चाई मान अंदर आएगा ना तो अपनी नुमाइश पर नहीं दूसरों की ज़रूरत पे खर्च करोगे। तुम्हारी एक शादी में हो सकता है कि कई गरीब खानदानों का 1 साल का खर्चा चल जाए। तुम जो एक लिबास बना के एक दफ़ा पहन के कहीं भी लटका देते हो सकता है कितने नंगे लोगों का 1 साल का लिबास बन जाए। ये सोच लानी है, अपने लिए नहीं जीना, दूसरों के लिए जीना। सिर्फ हमने कुरान थोड़ी पढ़ाना है, हमने इंशाल्लाह इंसानियत के दुखों को दूर करना है। लोग कहते हैं यहाँ कोई गरीब नहीं मिलता। मुझे किसी ने कहा, ऐसे कोई शेयर कर रहा था अपने अपनी बातें लोग करते हैं, किसी ने कहा कि ये आप लिगत पे इतने पैसे जो लगा रहे हैं दे रहे हैं, तो यहाँ पढ़ना तो अमीरों नहीं है ना, तो पाकिस्तान में भेजें जहाँ बेचारों के पास पैसे भी नहीं है, फीसें भी नहीं है, तो यहाँ तो सब अमीर हैं। आप क्या जवाब देते हैं? सोच में पड़ जाते हैं, हाँ वाकई कितनी अच्छी बात है, हमने तो सोचा भी नहीं। आप सोचिए ज़रा, मैंने उनको सिर्फ़ एक जुमले में जवाब दिया, मैंने कहा कि एक होती है पैसे की भूख ना, पैसा ना हो तो लोग भूखे होते हैं ना, गुर्बत पैसे की होती है, एक इल्म की भूख है, यहाँ ये भूख उससे भी ज़्यादा है। यहाँ तो कोई है ही नहीं दुकान खुली हुई कि जहाँ से आप इल्म का खाना खरीद के खा सके, तो बात का जवाब मिल गया उनको अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी बातों पे मैं अमूमन खामोश हो जाती हूँ। मैंने आप में से कुछ लोगों को देखा झगड़ना शुरू हो जाते हैं कायल करने की कोशिश में, शौक में, मोहब्बत में, अपने अल्फाज ज़ाया ना किया करें, उस बेचारे को क्या पता। लेकिन हकीकत है कि पेट की भूख बर्दाश्त करने के लिए तो कितने, आप देखिए खुदा ना सा किसी मुल्क में सैलाब आता है, जल्द आता है, पूरे दुनिया की ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस इतनी बड़ी बड़ी बनी हुई हैं जो लाखों डॉलर्स वहाँ भेजती हैं, सारी दुनिया उस पर लगती है, इल्म के लिए कितने लगाते हैं? देंगे काफिर आपको क्या आप इल्म नहीं पढ़ाएं, इल्ज़ाम तो उससे लग जाता है। किसी ने कहा कि फलां को दे दी यहूदी देते हैं, तो मैंने कहा कितने अच्छे हैं वो यहूदी मुबारक हैं जो कुरान पढ़ने के लिए देते हैं आपको, फलाँ को तो फलाँ देता है। सिर्फ नज़रें यहाँ ही रुक जाती हैं, ऊपर नहीं जाती लोगों की, जितने में उतनी बातें। तो भूख जो होती है ना उसको दूर करने के लिए इंसान को प्लानिंग करनी पड़ती है। क्या आपको लगता है कि आपके इर्द गिर्द भी कुछ ऐसे भूखे हैं? کیا صرف ادھر اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیمن ذا مقربہ مسکینن ذا متربہ، کیا ان ساری چیزوں کا تعلق صرف کھانے پینے سے؟ نہیں، ہر چیز کی بھوک ہوتی ہے۔ میں جب اس لفظ کو پڑھتی ہوں نا، شاید عادت ہے نا چونکہ ہر وقت یہی کام کرنے کرانے کی، تو میں جہاں لفظ بھوک پڑھتی ہوں نا تو مجھے اپنی اس کھانے کی بھوک سے زیادہ مجھے علم کی بھوک لگ جاتی ہے، جہالت اس کو دور کرنا۔ تو میں سوچتی ہوں کوئی بھوکا ہمارے سامنے بیٹھا ہو، صبح سے آپ کے پاس ہو، کھانا نہ کھایا ہو، کتنی ٹھیس اٹھتی ہے، چاہے وہ آپ کی نوکری ہو چاہے وہ آپ کا کوئی، ویسے ہی آ کے بیٹھا ہو، بار بار آپ پوچھیں گے آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، کھا لیں پی لیں کچھ لا دوں۔ کسی کو ہم صبح سے شام تک اپنے پاس بیٹھے ہیں اور وہ علم سے دور ہے، نماز سے دور ہے، ایمان سے دور ہے، تقویٰ سے دور ہے، کیا وہی تڑپ آتی؟ چلیں باقیوں کو سب کو پیچھے کر دیں، اپنے بچے کو لے لیں، آپ کا بچہ بیٹھا ہے آپ کے سامنے، کھانا نہیں کھایا اس نے، بھوکا ہے، دل میں ہوک اٹھتی؟ تو کیا وہی ہوک اپنے اس بچے کے دین سے دور ہونے پہ بھی اٹھتی کہ یہ دین کا بھوکا ہے، نماز کا بھوکا ہے، روزے کا بھوکا ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے، اندر اس کا مری نہ جائے کمزوری سے، اتنی ڈیفیشنسیز ہو رہی ہیں اس کے اندر، کیا ہوگا؟ تو اب ہم نے کون سی بھوک کی فکر کرنی ہے جو حقیقت میں دوسری بھوک کو بھی ختم کر دیتی ہے؟ جب آپ اندر سے کھاتے ہیں نا تو آپ کو باہر سے بار بار کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پلاننگ یہ نہیں ہوتی کہ ابھی کیا پکے گا، ابھی کیا پکے گا۔ یاد رکھیے ایک کسی کی بات، مجھے نام یاد اس وقت نہیں ہے، کوئی بہت بڑے معروف امام گزرے ہیں، تو وہ کہتے تھے میں صرف اس وقت کھاتا ہوں جب مجھے بھوک لگتی ہے، یعنی کئی کئی گھنٹے کھاتے نہیں بھوک نہیں لگی، اور جب بندہ کام میں مگن ہوتا ہے نا تو اس کو بھوک نہیں لگتی، اور جب بھوک لگتی ہے تو کھا لیتا ہوں بس، پھر کام میں لگ جاتا ہوں، پھر جب کبھی دوبارہ بھوک لگتی ہے تو جو پاس ہوتا ہے کھا لیتا ہوں۔ آپ اس پہ ایک ایکٹیویٹی کریں، ایک دن اپنے گھر والوں کو ساتھ لگا لیں، پورا اپنا چولہا چونکا بند رکھیں، برتن شرتن جو چیزیں آپ کو موٹیویٹ کرتی ہیں کہ آپ کھانا پکائیں، ایک دن اس کو بند کریں، کام میں لگ جائیں، کسی کوئی پلاننگ نہ رکھیں۔ ہوتا پتہ کیا کہ ہم نے وقت دیکھ کے بھوک لگتی ہے، یہ تو 12 بج گئے مجھے تو بھوک لگ گئی ہوگی، ایک تھے تو وہ سونے کا ٹائم گھڑی دیکھ کے کرتے تھے، گھڑی دیکھ کے کہتے تھے اب یہ میرے سونے کا ٹائم ہو گیا، چادر لی اور جا کے سو جاتے تھے، گھڑی نہ دیکھے تو ان کو نیند نہیں آتی تھی، ہمارا ذہن ہماری سوچ کے گرد گھومتا، ہم جیسے سوچتے ہیں نا ویسے کرتے ہیں۔ آپ ایک دن سوچیں کہ میں نے نہیں کھانا جب تک مجھے بھوک نہیں لگتی، سارا سارا دن آپ بھوکے رہیں گے، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، میں نے اس کو کئی دفعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کوئی ایسے انسان ہے میں ان سے پوچھتی ہوں آپ کو بھوک نہیں لگتی، سر میں درد نہیں ہوتا، بلڈ پریشر لو نہیں ہوتا، ویکنیس نہیں ہوتی؟ نہیں، سوچا ہی نہیں، بھوک ہی نہیں لگی، اور جب کھانا آتا ہے تو لگتا ہے کہ بہت بھوکے تھے، بھوک لگی ہوگی، کیوں نہیں کھایا، تھا ہی نہیں تو کھائے نہیں، کیوں لوگ کیا صبر نہیں کر سکتے، نہیں ہوتا اور خیال ہی نہیں گیا، ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں اس لیے ہم بھوکے ہوتے ہیں۔ اور جب ہمیں اپنے کھانے پینے کی بھوک کی زیادہ فکر ہے نا، اسی لیے پھر ہمیں دوسروں کے بھی کھانے پینے کی بھوک کی فکر ہوتی ہے، کوئی دوسرا بھوکا ہوگا تو ہمیں اس پہ ترس آئے گا کیونکہ ہم بھوک برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو ذی مسغبہ انتہائی بھوک کا وقت ہے، مسغبہ کا لفظ جہاں آپ کے لیے تھوڑا سا نیا ہے، کہ جب بڑی بھوک لگی ہوگی، قحط سالی مراد ہے اس طرح، کہ جہاں اس بندے کو انتہا سے زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے تو قحط سالی ہے، تو کیا تم دعوتیں کر رہے ہو اتنی بڑی بڑی اور لوگ بھوک سے مر رہے ہیں دنیا میں؟ سین غین با اس کا روٹ ہے سغیبہ، عام بھوک کو مسغبہ کہتے ہیں، اسی طرح جو جیم وا عین بھی آتا ہے، یہ دعا میں بھی لفظ آپ کو سکھایا گیا تھا، بھوک اور تھکن دونوں کے مجموعے کو مسغبہ کہتے ہیں، یعنی بھوک بھی لگی ہو اور تھکے بھی ہوں۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب عموماً قحط زیادہ ہوتا ہے، کھانا پینا کم ہو جاتا ہے، کام زیادہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ارد گرد چیزیں نہ مل رہی ہوں تو ایسے وقت پہ لوگوں کو دو۔ پھر اگلی چیز دیکھیے، یتیمن ذا مقربہ، قربت والا یتیم ہے بھی یتیم اور رشتہ دار بھی ہے، اور مسکینن ذا متربہ، لفظ دیکھیے گا بڑا پیارا ہے، مسکین کون سا ہے؟ ذا متربہ، متربہ کا لفظ کیا ہے؟ تراب، پڑا پیچھے مٹی، تو متربہ کا میم چھوڑ دیجئے، وہ فاعل اور مفعول والا چکر ہے، روٹ کیا اس کا؟ تارابا، متربہ جو مٹی میں چلا گیا، خاک نشین ہو گیا، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا رول گیا، بھوک کے مارے رولا ہوا شخص، اتنا محتاج ہو جائے کہ مٹی کے ساتھ مٹی مل جائے۔ تین باتیں سمجھ آئیں اگر اس کو دیکھیں ان لفظوں میں، نمبر ایک عام قحط سالی، اور جب खाने की चीज़ों की कमी हो उस वक्त खिलाना, दूसरा अपने करीबी रिश्तेदार यतीम को खिलाना, और तीसरा ऐसे मिस्कीन को खाना खिलाना जो खाक नशीन हो। अल्लाह ताला कहते हैं ये बड़ा मुश्किल काम है, ये घाटी पे चढ़ने वाला काम है, लेकिन वो कर लेगा जो तुम मकान मिनल लजीन आमनु वतवासो बिसब्री वतवासो बिल मरहमा हो। यानी सच्चा ईमान होगा तो ऐसे को आप खिलाएंगे, और झूठा ईमान होगा तो हलक तुम्हारा नुमाइश पे लगा देंगे। गरीब रिश्तेदारों को लोग दावतों में इसलिए नहीं बुलाते कि इनके कपड़े अच्छे नहीं, इनको देख के लोग सोचेंगे कि अच्छा ये इनके रिश्तेदार हैं। उलाइक असहाबुल मैमना, ये हैं दाएं हाथ वाले। इसके बरक्स वल्लज़ीना कफरू बिआयातिना हुम असहाबुल मशअमा, और जिन लोगों ने इनकार किया हमारी आयतों का वो लोग हैं बाएं हाथ वाले, शुम वाले हैं, मशअमा हैं। क्या होगा इनका? अलैहिम नारुम मुसदा, इन पर आग छाई होगी। नार तो आग को कहते हैं, मुसदा बड़े बड़े सतूनों के अंदर बंद चीज़ को अगर जहन में लाएं कि किसी को किसी जगह बंद कर दिया जाए जो आग का चैम्बर हो। लफ्ज चैम्बर सुना होगा आपने, बड़े बड़े चैम्बर्स फैक्ट्रियों में होते हैं कि उसके अंदर आग होती है, चिमनी जिसके ऊपर फिर होती है, ये है मुसदा। एक होता है आग जल रही थी उस बंदे को उसमें फेंक देना और फीलिंग आती है, और दूसरा होता है कि एक बंदे को बिठाकर उसके चारों तरफ एक ऐसा सिलेंडर या एक ऐसा सेल डाल दिया जाए कि जो आग से भरा हुआ है, चारों तरफ से आग उनको थाम लेगी। मुसदा कहते हैं जब दरवाजे को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, अहले अरब कहा करते थे औसतुल बाब ऐ अगलक्तुहु, यानी इनको आग में फेंक दिया जाएगा और दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और बाहर निकलने की कोई सूरत नहीं होगी। सोचिए ज़रा, आग लगी है तो बंदा एग्जिट ढूंढता है, लोग भागते हैं कि आग हो तो निकले, आग लगी हुई है तो उससे निकलने का रास्ता हो, इसलिए एग्जिट रोक को कोई ब्लॉक नहीं करने देता। जहन्नम में आग और उसके बाद मुसदा, मुगल्लका के मानों में मुसदा, बंद की हुई चारों तरफ से बंद। इसको आप सोचें तो प्रेशर कुकर को सोच लें, ओवन को सोच लें, आप उसमें सही सलामत नरम चिकन रखते हैं, आग लगा के बाहर से सील कर देते हैं, अंदर का सेक बाहर नहीं आ सकता। जो मालन अहलक तो मालन लुबादा, इसकी सिफत के हामिल होते हैं ना, क़्यामत के दिन अल्लाह उनको ये सजाएँ देगा। आप देखिए बात, लोग कहते हैं मेरे हाथ में पैसा नहीं टिकता, ख़ास तौर पे इस जुमले को अपने अहलक तुमाल लुबदा की सेंस में अपनी शॉपिंग हैबिट के साथ लेना है। अपने लिए लिखे ज़रा, क्या कुरान पढ़ने के बाद मेरी शॉपिंग की आदत बदली? क्या मैं माल को हलाकत के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ या अपने सदका जारिया के लिए इस्तेमाल करती हूँ? कुछ लोगों की नज़र चीज़ों पर होती है, रैक्स पर, कुछ की कीमत पर होती है, अक्लमंद कौन है? अलम नज अल्लाहु आईनी, अपने लिए आदत बनाएं। थोड़े से आपको शॉपिंग के एटिकेट्स भी दे दूं। पहली बात है कि बिला ज़रूरत कभी भी बाज़ार ना जाएं। आप बाज़ार नहीं जाते ना आप अपने आप को बहुत मुतमईन पाते हैं, ना बाज़ार जाएं ना आपको चीज़ें दिखेंगी। दूसरा अपने लिए लिखे कि कोई चीज़ लेने से पहले घर में चेक करना चाहिए कि उस वो चीज़ मौजूद है, उसका नेमल बदल ढूँढ लें। ये चीज़ आपके घर की ग्रोसरी से लेके कपड़े जेवर आपकी लेस डोरी तक भी होनी चाहिए, हमेशा पहले घर से ढूंढें। खाना पका रहे हैं, घर का चीज़ें पहले ख़त्म करें, फ्रिज खाली करें फिर लेके आएं, इसी तरह आगे से आगे चलते जाएं। ज़िंदगी में ऑल्ट्रेशन की आदत बहुत काम देती है इंसान को। पहले दौर में औरतें इतनी सुगढ़ होती थी, पहले कपड़े पहन लेती थी फिर उन्हीं की रज़ाइयाँ बना लेती थी, शादियों के लहंगे गरारे जो होते थे बाद में न जाने वो बच्चों के ऊपर कितनी कितनी दफ़ा कितनी शक्लों में बदलते थे। मैं कहती हूँ आज तो बड़ों को छोड़े हमारे तो बच्चे बिगड़ गए। किसी बच्ची को कहें तुम माँ का छोटा किया हुआ कपड़ा पहन लो, माँ का तो आज कम महंगा होगा, बेटी का ज़्यादा महंगा होता है। आप फील करें कितनी तेज़ी से हम ट्रेडिशन से भी हटते जा रहे हैं और हम अपनी ज़ात पर अहलक तुमा लल्लुबादा। मुझे तो इस सूरत में याद छोड़ ही नहीं रही कि मैंने तो पानी की तरह माल बहा दिया। इसके बाद आपको मैंने पहले शायद एक्टिविटी दी थी लेकिन इसके साथ अगर आप करना चाहें दोबारा कर लें, घर जाएं, अपनी वार्डरोब खोल लें और कैलकुलेटर पकड़ लें हाथ में। ऐसी गेस करें कि मैंने अपने कपड़ों पे पिछले यानी जितने भी कपड़े मौजूद हैं इस पे मैंने कितना पैसा लगाया हुआ है। कल के आए और कल बताएं, फिर हम इस पे बात करेंगे। आप सब अपना नोट करके आए। कपड़ों की अलमारी खोलें, नए पुराने जो भी हैं, सस्ते आपको मिले ख़रीदें। खास तौर पर ख़रीदे हुए की बात करेंगे इसमें हम, कि आपने खुद ख़रीदे हैं इसको, कितने कपड़ों पे आपने क्या पैसा लगाया। बस ऐसे कर ले, ये 100 का, ये 200 का, ये 500 का। यकीन करें मैं आपको अपनी ना समझी बताती हूँ कि मुझे एक महीना डेढ़ पहले पता चला कि 1000 करोन का भी जोड़ा मिलता है। अब तो मैंने आपकी इन मीना बाज़ारों में बिकते हुए भी देख लिए हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़ा एक धमाका था कि कोई औरत 800, 900, 1000 करोन का जोड़ा ख़रीदती है, और ये पता चला ये तो कुछ भी नहीं। और उस दिन जो मोस में हैरत हुई, एक वेडिंग ड्रेस था, कोई किसी ने डोनेट किया आप ही लोगों में से, तो वो वहाँ वो बेचना चाह रहे थे, तो ऐसे ही एंड पे वो जब कर रहे थे ये लोग बिडिंग, तो वो ड्रेस भी था, तो किसी ने कहा अच्छा ये कितने का है। तो मैं अपने तौर पे सोच रही हूँ ये कितने का, अब जिनका मैं नहीं बताती मैंने क्या सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कितने का होगा। हर बंदा अपने जहन में सोचता रहता है ना। तो वहाँ एक कपड़ों के स्टॉल वाली भी आई हुई थी सिस्टर, तो मेरी उन पर नज़र पड़ी, तो मैंने उन्हें कहा आप इधर आएँ क्योंकि आपका तो दिन रात का ये काम है, आप बताएं ये ड्रेस कितने का होना चाहिए और कितने का होगा। तो उसने आके काफ़ी नज़र से, जैसे वो कहते हैं ना, परखा पुरखा, तो कहने लगी ये 8000 करोन से तो सस्ता नहीं होना चाहिए। करीब था कि मैं कुर्सी से गिर जाती। यकीन करें 8000 करोन का, इसका तो लोग लेते हैं ना। फिर उसने बताया कि ये एक जोड़ा नहीं होता, इसके पीछे इतने चक्कर होते हैं, इतनी लोड शेडिंग्स होती हैं, इतने कारीगरों के मुंह लगना पड़ता है, दिस एंड दैट। ये वेडिंग ड्रेस 8000 का, तो यकीनन फिर आप भी जानते होंगे इधर मिलता होगा दुल्हन का जोड़ा 8-9 हज़ार का, 5 का मिलता है, इससे भी महंगा मिलता है, लोग लेते हैं ना, ये सस्ता है। दुआ करें कि माल को ज़ाया ना करें, कल क़यामत के दिन बड़ी हसरत आएगी। तो कल आप सब ने ये काम करना है, यहाँ हम शेयर करेंगे अपनी अपनी ज़रा जायदाद गिन लें अभी, हासिबु कबला तो हासिबु, खुद हिसाब कर लें कितना पैसा कपड़ों पे लगाया। अपने लिए एक छोटा सा नुक्ता और नोट करें, हर वो चीज़ जो 1 साल से आपने इस्तेमाल नहीं की दे दें, निकाल दें अल्लाह के रास्ते में। बात मैंने किसी बुज़ुर्ग से सीखी थी, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही, कहने लगे जो चीज़ तुमने 1 साल से नहीं इस्तेमाल की ना, तो समझ लो कि वो तुम्हारी नहीं है, वो किसी और की है जो गलती से तुम्हारे घर पड़ी है, ढूंढ के उसको दे दो, ज़िंदगी को आसान करें। जिनको भागना होता है ना उनकी ज़िंदगी बहुत आसान है। हम अपनी ज़िंदगी में इतना जंग डालते हैं फिर उसी को लपेटते रहते हैं, धूप लगा रहे हैं, खुशका कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, अब ये सफाई हो रही है, अब इसको निकाल रहे हैं, गिनने में दिमाग लग जाता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे लिए आसानियों के रास्ते बना दे। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जती अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
ला उक्सिमु बिहादल बलद वतहिल्लू बिहादल बलद ووالدٍ وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة.